نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الغر ومرى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد ایسی چیز کو جو انسان کو نقصان دے انسان اس میں فکر کرتا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے مثال کے طور پر اس مسجد میں کہیں سے ہوا آ رہی ہو سوراخ ہو اور اس سے ٹھنڈ آتی ہو تو ہم ضرور سوچیں گے ٹھنڈ کہاں سے آ رہی ہے اس کو تلاش کریں گے اور اس سوراخ کو بند کریں گے جیسے اس سوراخ بند ہوگا تو ہوا کا آنا جو ہے ٹھنڈا ہوا کا جو آنا ہوگا بند ہو جائے گا اور کمرہ صحیح ہو جائے گا پتہ چلے جی اس سوا سے کوئی زہریلا کیڑا آتا ہے یا کوئی سانپ آتا ہے تو فوراً سوچیں گے اس جگہ کو بند کریں تاکہ وہ سانپ نہ آئے اس کو بند کر دیں چھت ٹپک رہی ہے کہیں سے بارش آ رہی ہے تو ہم فوراً کوشش کریں گے اس چھت کو صحیح کریں تاکہ بارش جو ہے کمرے میں گرے نہ اور اس کو نقصان نہ ہو یہ مثال ہے تمام باتوں کی کہ جہاں سے کوئی نقصان کی چیز نظر آتی ہے انسان اس کو بند کر دیتا ہے اور بہت جلدی بند کر دیتا ہے جو آج انسان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں دندات جس میں ہم مبتلا ہیں پریشانی ہیں مصیبتیں ہیں بے برکتیں ہیں گھروں میں فساد ہیں لڑائی ہیں اولاد نافرمان ہیں زندگی میں دکھاوا ہے رکاوٹ ہے دنیا کی بے انتہا رغبتیں ہیں پیسے مال سے محبت ہے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے عبادات ہماری صحیح نہیں ہے اور کوئی کام انسان کے رکے بھی ہیں ہزاروں ایسی چیزیں انسان ہماری زندگی میں مبتلا ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہے آدمی گھروں کے حالات ایسے ہیں عام زندگی انسان کیسی ہے کاروباری معاملات انسان کیسے ہیں رکاوٹیں بڑی ہیں تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی وجہ ہوگی جتنی چیزیں جو ہو رہی ہیں انسان کے ساتھ تو ضرور کوئی وجہ ہوگی اس کی جو ایسی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں بیماری ہیں مصیبتیں پریشانی ہیں بری پڑے تو ظاہر اگر اس کی پتہ چل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے تو ہر آدمی جو ہے پسند کرے گا پھر یہ مصیبتوں سے پہلے فوراً کوشش کرے گا یا اس کو ختم کیا جائے جان چھوٹی میری اس مصیبت سے پریشانی سے عقل مندی کی تو یہی تقاضا ہے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مستقل طور پر پریشانی میں مبتلا رہوں حالات میرے خراب رہیں میرے کام رک رہے ہیں تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں بتایا اس کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ قرآن نے ہمیں کوئی چیز نہ بتائی ہو بہت واضح اللہ نے اس بارے میں بتایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم چھوٹی سی آیت ہے چھوٹی سی وما اصابکم من مصیبت अल्लाह ताला कहते हैं मुसीबत, हट, ये परेशानी है, ये हालात, ये बीमारी है, ये बेबरकती है, ये तेरी मुसीबतें, ये घरों में झगड़े, ये लड़ाई है, ये औलाद की प्रॉब्लम, कोई जिन नहीं है, कोई जादू नहीं है, वो तेरे पीछे नहीं लगा हुआ। और जुल्म यह है कि इसके ऊपर ये कि जब इसका इलाज करना शुरू करते हैं तो वो भी नमाकुल किस्म का, आमलों के पास भागते हैं, फिर जिन्हों के सहारे लेते हैं, जादुओं के सहारे लेते हैं। अल्लाह को कैसा यकीन है, अल्लाह ताला कहते हैं, कुरान क्यों नहीं देखते हैं, हम सबको मुसीबत, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वजह ही नहीं है तेरी परेशानियों की, मुसीबत की, ये तेरी बीमारियों की, तेरे झगड़ों की, तेरे डिप्रेशनों की। कुरान से ज़्यादा कोई बात बता सकता है, मुझे बताएं, अल्लाह से ज़्यादा कोई बात हमें समझा सकता है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद अमलों के पास जाने की ज़रूरत है, गलत रास्तों पर चलने की ज़रूरत है, उनको पैसे खिलाने की, जिन्नात के पीछे जाने की, जिन्नात हैं वो तो बदमाशी करते हैं, झूठ मूठ खबरें देते हैं, हाँ उसने जादू किया, उसने फलां किया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तहमात में ला के शिक में डाल देते हैं इंसान को, बुरे हालात में डाल देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और फिर उससे यह है कि आदमी जब उनका सहारा लेता है तो वो खत्म ऐसे ही हो गया, अल्लाह ये क्या है, ये नज़र बंद हो जाता है जिस तरह आदमी, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर थे ना, उन्होंने रस्सियाँ फेंकी थी तो नज़र आ रहा था सांप चल रहे हैं, तो जब उनका एतक़ाद बन जाता है इन चीज़ों पर कि वो जायजी मेरे, तो उस आमिर के पास चलते हैं, उसे चीज़ कहते हैं ये बड़ा आदमी है। हाँ आज हमारी 90% खासतौर पर औरतें जो हैं जाके देखें उनके हमारे मुल्कों में खास तौर पर, यहाँ तो कोई है ही नहीं शायद इस किस्म का मामला, तो वहाँ तो आपको अंदर जाने की जगह नहीं मिली, इतने बिजी होते हैं वो आमिल साहब, कोई ना पर्दा ना कुछ छोड़ दे, कुछ हालात बड़े होते हैं, सब कहते हैं बस यहीं से शफा मिलेगी, यहीं से कुछ मिलेगा। तो काश हम अपने आप को समझें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तमाम साहब आपको मुसीबत है कि तेरी जितनी भी परेशानी है छोटी से लेके बड़ी तक, यानी दिल में भी तेरी कोई रंजिश आ जाए, ये भी परेशानी होती है ना आदमी की, छोटी भी रंजिश आ जाए, छोटा सा भी काम खराब हो जाए, जिस तरह खाना खाते जबान ही आ जाए, ये भी तेरी परेशानी हो जाती है ना आदमी की, आती एक साथ। तो जो अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह वाले समाज जो है, जो अल्लाह पर यकीन करने वाले, अल्लाह वाले मतलब ये नहीं बोले अल्लाह बात करो, हर वो मोमिन जो ईमान रखता है अगर जबान भी खाना खाते आए तो उसके मुँह से एक चीज़ निकलती है, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, क्योंकि उसके ज़मीर में है कि ये जो कुछ हुआ है ये मेरे गुनाह की वजह से है। अल्लाह ताला भी यही कहता है वमा असाबकुम मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम, ये हालात, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये रुकावटें तुमने खुद पैदा की हुई हैं, ये तेरी की हुई हैं, कोई नहीं बाहर से आदमी आया, किसी के पास इतना फजूल वक्त है ना, कोई चीज़ ऐसी काम कर सकती है ना, कोई ऐसी चीज़ें तो पैसे फसल बकवासें कर सकें। हाँ बीमारी हमने दी हैं, हज़ारों किस्म की बीमारी हैं, उनके इलाज मौजूद हैं, लेकिन दक्यान उसी जो बातें करते हैं, सबसे पहला तो यही समझे कि आदमी ये मेरा गुनाह है, ताज्जुब तो यह है कि आदमी गुनाह को तस्लीम नहीं करता। अच्छा उससे कोई बात करी, मैं तो शायद कोई गुनाह ही नहीं करता जी, मैं तो बिल्कुल मैंने तो किया ही नहीं गुनाह, यानी एक गुनाह पे गुनाह की सज़ा सबसे बड़ी ये है कि उसको एहसास गुनाह ही ख़त्म, अल्लाह अकबर, तक उसको ख़त्म कर ले। नहीं मैं तो नहीं किता जी, नहीं हम तो नहीं, हम तो बिल्कुल हमारा तो देखें जी बिल्कुल ठीक ठाक है, हम तो जी कभी सोचा भी नहीं। उसको ये भी एहसास, इतनी बड़ी सज़ा अल्लाह ताला ने दे दी कि उसको अपने गुनाह का एहसास भी नहीं हो रहा ताकि वो उस गुनाह को हटा दे। तो कुरान हम ये बताते हैं कि इस सबकी वजहत जो है वो क्या है, गुनाह है। गुनाह को छोटी चीज़ समझते हैं हम, इतनी छोटी चीज़ समझते हैं कि मैं खा चींटी उससे बड़ी समझते हैं, मच्छर उससे बड़ा समझते हैं, मच्छर से डरते हैं वो काट खाना खाए, मच्छरदानी का इंतज़ाम करते हैं, मच्छर की चीज़ है उससे भी डरते हैं, काटेगा तो मुझे मलेरिया कर देगा। लेकिन जो असल चीज़ है गुनाह, वो हमारी नज़र में एक चीज़ ही कुछ नहीं, उसकी हैसियत कुछ नहीं, कुरान ने एहसास दिला रहे कि जिसने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया दुनिया के अंदर, आखिरत का मामला भी आने वाला है, क्या अपने जिंदगियों को देखो, अपने हालात को देखो, तुम्हारे हालात क्या है, यहां तुम बर्बाद हो गए हो तो अभी तो आगे जो मामला होगा उसमें तो कितनी सजाएं होंगी, बहुत बड़ी बात है। सब अपने ही पैदा कर रहा है। अहदीस के अंदर इशारात मिलते हैं इस चीज पर। एक गुना इंसान करता है, गुना हुजम नहीं बताया गुना पर, क्योंकि गुना सब पहाड़ों से बड़ा होता है, बहुत वजनी होता है गुना, बहुत खबीस होता है। एक गुना किसी अर्थ में आदी हो गया गुनाह करने का, उसने पता नहीं गुनाह मैंने किया है। जब वो गुनाह कर ले तो ऑटोमेटिक मशीन चलती है अल्लाह की तरफ से, याद रखना बात। उस गुनाह की एकदम असरात फुरमात है, जैसे पानी है ना, इसे मैंने चमचा चीनी का डाला, एकदम असर उसमें हो जाएगा ना। एक चमचा तो है ना, चलो उसको छोड़ दें चमचे को, उस स्क्रीन की छोटी सी गोली मिलती है चूहे वाले पीते हैं, वही डाल दें इतनी सी हुजम उसमें, एक जग में डाल दें पूरे पानी को मीठा कर देगी। तो गुनाह भी यकीन नहीं आता जिसको लगता है। जब बंदा गुनाह करता है तो कोई भी करता है, अल्लाह वाली भी करे, ये नहीं कि भाई कोई उसके लिए खास क्राइटेरिया दिया कि ये कर ले तो उसके लिए सही है, ये बहुत बड़ा जाकिर है जी, सुबह की नमाज पढ़ के भी है, पांच वक्त नमाज पढ़ी है जी, ये बड़ा अच्छा है जी, इसे इमाम बांधा है, दाढ़ी रखी, ये करेगा गुनाह से कुछ नहीं। नहीं, जो भी करेगा चाहे कुतुब करे गौस करे अब्दाल करे, गुनाह की हासियत यही होगी जैसे मैंने बताया, उसकी खासियत फौरन उसी वक्त वही होगी, जैसे गिलास को छोटी सी स्क्रीन मीठा कर देती है तो गुनाह करती क्या है हम तो नहीं पहचान सकते, ना हम जान सकते ना हमें पता हो सकता है। ये तो अल्लाह का करम और फजल है कि उसने बता दिया, सुभान अल्लाह। हम तो करिए, अगर इंसान के बच्चे हैं अल्लाह की इस बात को समझ जाएं कि अल्लाह बता रहा है कि वो ना बताता हमें पता नहीं था, उसने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूं कि इस गुनाह का असर क्या होता है, तब इंसान को गुनाह कर लेता है तो फौरन उसका पहला असर तो ये होता है कि उसके दिल पे जुल्मत छा जाती है। जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, यानी दिल के अंदर एक नूर होता है इंसान का ईमान, जैसे इस कमरे में लाइट है रोशन दे रही है, इसी तरह दिल के अंदर जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं दिल के साथ तो उसमें एक नूर आ जाता है, बोले सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत रोशनी होती है उसकी। जैसे यहाँ कंदील लगाइए बंद कर दें अंधेरा हो जाएगा, तो नूर जो है ईमान का एक पैदा हो जाता है, हर ईमान वाले के दिल में वो नूर मौजूद है जिसके सहारे हम जिंदा है ईमान वाले। जब तो फर्क है कि बदतरीन से बदतरीन गुनाहगार भी ईमान वाला होगा वो सारे करोड़ों ना मानने वालों से अफजल होगा, सारी दुनिया से अफजल होगा जो नहीं मानने वाला गुनाहगार, क्यों? उसमें एक नूर है उसके अंदर, ईमान का नूर है, बस फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह उस नूर की वजह से। तो क्या होता है उस नूर पे, क्या होता है जैसे गुनाह किया अंधेरा छा जाता है, अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कोई चीज उस नूर को ढांप नहीं सकती, इतनी जबरदस्त नूर है। लेकिन गुनाह के अंदर देखें कितनी खबासत है कि गुनाह करने के बाद, अब गुनाह ये नहीं जना ही हो रहे हैं या शराब, नहीं नहीं गुनाह है बस, उस तारीख में उस हिस्ट्री है कि ये गुनाह कहा जाता है उसको, वो आप सबसे पहले क्या करेगा दिल के ऊपर जुल्मत जो है छा जाएगी, उसके बाद अगला काम शुरू होता है फिर। उसमें फिर एक कैफियत पैदा होगी, अल्लाह जुल्मत आ गई दिल के ऊपर, उसमें कैफियत गुनाह के बाद उसका दिल करेगा एक और गुनाह करूं, गोया गुनाह करना आसान हो जाएगा। अब यहां मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बात आगे बात तो बाद में करूंगा। अकाबी ने देवबंद में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे, आलिम भी थे, बहुत मशहूर मारूफ, बहुत बाइज्जत आदमी थे, हज़रत मौलाना याकूब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जानते इनके नाम से, बहुत ही सूफी दरवेश किस्म के आदमी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे, बड़े अल्लाह वाले, उनकी बात कर रहा हूँ, छोटे आदमी की नहीं कर रहा। मैंने बात जो की थी कि जो भी करे, रो रहे बैठे एक दफा गुने के अंदर बेचारे, तो लोग बड़े परेशान हो गए, हजरत क्या कैसी कैफियत हो गई है, एक महीना हो गया, एक महीने से भी ज्यादा हो गया, हजरत की मामूल नजर नहीं आ रहा है कुछ। हिम्मत करके लोगों ने पूछा कि हजरत क्या वजह है, बहुत सख्त परेशान है, गिरी आप पे तारी है, ये कैफियत आपको तो पहले कभी नहीं हुई। कहने में आपने दुख पूछा है तो बताता हूं मैं, कि हुआ ऐसे कि एक साहब ने मेरी दावत की, तो मैं दावत पे चला गया। मैंने पहले ही लुकमा एक खाया था तो मुझे पता चल गया कि जो रिस्क है हलाल नहीं है, उठता ना उनमें। अब मैं वो लुकमा खा गया तो उसके बाद ये गुना मुझसे हो गया। जो कैफियत हुई उस गुना की है कि आज 2 महीने हो गए मेरे दिल पे एक स्याही छा गई थी। ये हदीस देखें तो हदीस जानते थे, दिल पे एक स्याही छा गई है और हर वक्त मेरे दिल के अंदर वसाविस और तकबीत जो रगबत की है वो कहती है एक गुना और कर, ये गुना भी कर ले, चलो कोई बस यही एक सर्कल मेरे दिमाग के अंदर वजूद छुआ है जिसके लिए 2 माह से मैं कसरत कर रहा हूँ इस गुना को ख़त्म करने, इस जुल्मत को दूर करने की। दुआ करें कि वो दुनिया मुझसे दूर हो जाए। एक छोटी बात, एक अल्लाह के वली की बात है। तो हमारा क्या हाल होगा मेरे भाइयों, सोचिए, खुद ही मर रहे हैं अपने हाथों में, बर्बादी है। एक के बाद फिर एक गुनाह खींचता है, या अंधेरों के अंदर अंधेरा खींचता चल जाता है वो गुनाह जो उसको। आगे सुने सब हदीस है, फिर वो गुनाह अल्लाह का खौफ निकाल देगा। अल्लाह अब देखें गुनाहगार से कहते नमाज पढ़ो, जी हम तो गुनाहगार हैं क्या नमाज पढ़ सकते हैं। सुना ये फिक्र आपने, नहीं सुना किस से आप कहें नहीं हम तो गुनाहगार हैं भैया। अब ये गुनाह क्या, ठीक है तो क्या होगा कि वो खौफ खुला ही जो होगा, कितना बड़ा अजाब है एक मोमिन से अल्लाह का खौफ निकाल दिया जाए, जबान से हालात से उसके बेखौफ बातें निकलेंगी जो अल्लाह का खौफ नहीं होता उसको, क्या क्या बातें होंगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक दारुल के अंदर बनोरी टाउन में एक शख्स आए और आके खुशफुस कर रहे थे, कहते जी मैं क्या कहूँ क्या, कहते जी मुझे आदत पड़ गई अपनी बेटी के साथ जना करता हूँ। ये आपको बता रहा हूँ, गुनाह को मामूली चीज़ ना समझे, ये हो जाए होगा, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि एक चीज़ में मैंने तासीर रखी है हो गई। मैं ये भी सजा है, फिर इंसान को उस गुनाह के तहत मिलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। बताए मामूली चीज है, कहते हैं मैं अपनी बेटी के साथ जिना करता हूँ, खौफ ही निकल गया। अकली गुनाह और क्या करता है, हया निकाल देता है, बेहया कर देता है। जो आज आप देखते हैं बेहाई पहली हुई है आम खातिनों के अंदर, वजह क्या है, गुनाह बेखौफ हो बेहया हो गई, पता ही नहीं हम हया भी कोई चीज है। लपाड़ लपाड़ बड़े शौक शौक के साथ, बाजार भी गर्म है, मामला गर्म है, महफिलें गर्म है, मजलिसें गर्म है, कोई हराम बैठा है, कौन बैठा है, कोई कुछ पता ही नहीं। इस्लामी माशरे की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ हमारे तहजीब के अंदर हमारे कुरान के अंदर इसकी हदूद दी गई हैं। क्यों दी गई हैं, ताकि माशरे को सही किया जाए। अल्लाह ने कोई सजा नहीं दी, बल्कि क्यों दी हैं, हदूद हमें लगाई हैं ताकि माशरे को सही किया जाए और सही जिंदगी गुजरे, इनकी सुकून वाली जिंदगी गुजरे, आराम वाली जिंदगी गुजरे। कोई एहसास नहीं है हराम का हलाल का, महरम गैर महरम कुछ नहीं पता। नमाजें पढ़े हैं, जिक्र जो कर रहे हैं, फल इनसे कोई ताल्लुक है उसका। मैंने आपको अल्लाह की वली की बात बताई है, गौस कुतब उनके साथ गुनाह हो जाए असर पैदा हो जाएगा, बेहयाई हो जाए, बेखौफ हो जाएंगे, गुनाहों की रखवतें आने शुरू हो जाएंगी, सारे सालों की मेहनत पर पानी फिरना शुरू हो जाएगा इंसान। एक इम्तहान है भैया, आज हम सुनते हैं फला आदमी फला आदमी, तो उसी दिन हमें खबर पहुंच जाती है फला आदमी जना कर लिया, हाँ खुल जाती इंसान इस मुकाम का, क्योंकि उसने एहतियात को छोड़ दिया, शरीर के दायरे से निकल गया। तो बुजुर्गी इस चीज का नाम नहीं है कि कोई लेबल लगा दे, कोई आज अल्लाह वाला कह दे, कोई बहुत बड़ा कह दे। जिनकी मिसाल आपको दी है, और 2 महीने हो गए बेचारे कहते हैं मैं सफाई कर, कहां गई सारी बुजुर्गी इंसान, क्योंकि मजलिस ऐसी है तो मैं ऐसी बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हमें इसकी समझता फरमाए, कितनी बड़ी बात अमा साहब, कितनी अल्लाह ने कहा फबीमा कसा पता है, देखो तू क्या कर रहा है अपने साथ जुलम, अल्लाह तआला कर अपने हाथों से मार रहा है अपने आप को, सीना को भी कर रहा है अपने आप को सब वो। फिर गुनाह जब इंसान करता है तो फिर उसमें एक चीज पैदा होती है कि उसको कोई गुना भी गुना लगते ही नहीं, अल्लाह आंखें बंद हो जाती हैं उसकी, अंधा हो जाता है, उसको नहीं पता चलता है गुनाह है नजी क्या हो गए छोड़े एक ही नमाज छोड़ी जमात ना लेंगे कि फर्क पड़ता, आम फिक्र। और बास कहते हैं तो अंदर यही जज्बे हैं, जब वो अमल नहीं ना करते तो इस जज्बे के तहत वो अमल नहीं करे, धक्के से आप करा दें, लेकिन वो जज्बा पैदा नहीं हुआ कि जो खौफ खुदा का जज्बा होता है कि जाऊँ मैं नमाज पढ़ूँ, टाइम ना गुजरे, नींद आसाई सारी रात नहीं आती, बुरा हाल होता है इंसान का, यार क्या हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, अल्लाह से दुआएं कर देता अल्लाह मुझे तबीयत में सही कर देता कि मैं नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि तो बिटवीन रब और बंदे का मामला होता है ना, होता है इंसान की तभी तबीयत खराब हो गई, आजकल तो बीमारी इतनी, ब्लड प्रेशर बैठे बैठे हाई आदमी वो हो जाता है, अच्छा था बिस्तर लेटते सुबह उसका हाल ही खराब होता है, मुझ जैसा आदमी बेचारा कमजोरी भी है और बीमार भी होता है, बिस्तर पर लेटते पता ही नहीं होता कि सुबह का आदमी सही उठेगा भी नहीं उठेगा, इतनी तो गोलियाँ आदमी खा के सोते, आम आदमी की बात कर रहा हूँ आपसे, अल्लाह के सहारा होता है कि अल्लाह उनके खौफ को, अब कोई आदमी तीसरा तो नहीं है उसके साथ, है तीसरा आदमी वो नहीं, अल्लाह की ज़ात और बंदा है उसका ताल्लुक है, वो जानता है कि मेरा बंदा जी किस हाल में है, कितना खौफ है इसको मुझसे, कि डर रहा है कि सुबह मैं नमाज पर जा भी सकूँ, एक बेखौफ है, आँख नहीं खोली जी, आँख तो फिर उस वक्त खुलेगी जब मौत आएगी, ये आँखें उस वक्त खुलती हैं, आँखें खुलने की वजह से आँखें ना खोलें नमाज के टाइम, तो गुना किसी किस्म का गुना बेहया कर देता, अल्लाह का खौफ खत्म कर देता, आगे सुने यही गुना की बात है। और अजाब क्या होता है इसका, कि उसकी दुआएं ही कबूल नहीं होती, ओ हालांकि अल्लाह ने कहा कि तू दुआ मांग कर कबूल कर लूंगा, उसकी दुआओं में और रब की कबूलियत में क्या चीज हायल हो जाती है, वो गुना हायल हो जाता है। वो सूफी साहब का, वो कारी साहब का, वो हाफिज साहब का, वो हजरत साहब का, कहीं दुआ नहीं भी कबूल, हजरत साहब क्या बात है, हो कैसे ना कि हजरत साहब ने दुआ कबूल ना उसकी, हो कैसे ना कि हाफिज कुरान उसकी दुआ कबूल ना हो कैसे सकता है कि जाकिर और दुआ कबूल जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया मैं इनकी दुआओं को कबूल करता, हो क्यों नहीं रहा, ये भी नहीं सोचता, वही कि तूने बदतमीजी की है, हमजदगी की है तूने, तूने गुनाह किया, इधर ध्यान नहीं जाएगा ना, अपनी बुजुर्गी की तरफ ध्यान जाता है, अपने अमालों की तरफ ध्यान जाता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, नहीं गुनाह के इधर पेंच मारते हैं, हालांकि तुम्हें अंदाज ये होना चाहिए मोमिन का, जैसे मैंने बताया खाने वक्त भी जबान भी आ जाए, अगर खाते वक्त तो ये नहीं कहता कि गलती मेरी है, मुझे गलती नहीं, फौरन क्या कहता है, या अल्लाह माफ़ करो, अस्तग़फ़िर मुझसे गुनाह मेरे मौला, मुझे माफ़ फरमा दे अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे, ये अंदाज होना चाहिए। सबसे बड़ा बात बेखौफी की ये है कि इंसान दूसरों पर इल्ज़ाम देता है, मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा कि ये हुआ है, मेरा काम फला नहीं हो रहा कि ये हुआ है, मुझे घबराहट काम करते हुए ये हो रही है कि ये हुआ है, मुझे ये क्या है, ये एक और गुनाह पे इंसान सजा दे रहा है उस शख्स को, कि ये खुद उसको इल्ज़ाम नहीं ठहरा जिस चीज़ को मैंने कहा है इस वजह से तेरा काम नहीं हो रहा, बल्कि और नुकतों की तरफ जा रहा है जिंदा की, किस वजह से मेरे काम नहीं हो रहा। आगे सुने कितनी बड़ी नुकसान, सारा सारा हमारे एक चीज पे है दोस्त, दुनिया में आखिरत में, वो क्या चीज है, रहमत इलाही, उसी को मुंतजर है हर आदमी मजाज, किसका रहमत, अल्लाह ताला कहते तू गुनाह करता है तो मेरी रहमत भी खत्म हो जाती है उस शख्स, अल्लाह कहते मेरी रहमत चली जाती है। अगला सुने कि उस गुनाह की वजह से उस बंदे को अपने रब से मायूसी हो जाती है, सुभान अल्लाह, अब उसको ये यकीन हो जाता है कि यार मैं अल्लाह ताला ने क्या करना है, छोड़ो बड़ी दुआएं, ये लफ्ज मुझसे कुछ ने बड़ी दुआएं मांगी जी, मैं तो बड़ा नहीं काम किया जी, बस भैया आप ये बड़े नमाजें पढ़ी हाजत की नमाज बहुत पढ़ी है जी, मैं तो फलां काम भी बहुत कर चुके हैं, होता ही नहीं, दुनिया में सुनते ना ये बातें, बड़े किए जी बड़े हमने मांगे जी, तो बहुत इससे नहीं होगा वो कोई चीज़, हम इससे कोई फायदा नहीं, मायूसी में डूब जाते हैं, और वो मायूसी जो है वो एक नई बीमारी को क्रिएट किया है जो कि कभी मुसलमान में नहीं होनी चाहिए वो बीमारी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा बीमारी मुसलमानों में, उसको कहते हैं डिप्रेशन, सही कह रहे हैं नहीं, मुसलमान और डिप्रेशन दो मुतजाज चीज़ें हैं, अपोजिट टू ईच अदर, मुसलमान और डिस्टर्ब हो अल्लाह, जिसके साथ रब हो वो महकुमा ही ना माकुन, तुम वो परेशान हो, उसको डिप्रेशन हो, वो कह जी मुझे गोली दो नींद नहीं आती, वो कह जी मुझे करोड़ देता हूँ सही रात ये नहीं हो जाता, वो कह जी मुझे ये फलाव हो गया तो मुझे ये नहीं होता। सोच सकते हैं आप, ये दो मुसाज चीजें हैं। और आज 99% जो है वो डिप्रेशन में मुबतला है। एक खास साइकोट्रिस्ट के पास जितने भी मरीज आएंगे शर्म आती है देखते हुए कि क्या बात है जी, मैं जी मुसलमान क्या नाम है, नाम अच्छा नींद नहीं आती जी मुझे, फला नहीं आता जी नहीं। मैं हूं ना डॉक्टर, सबसे पहले उसके ऊपर गुना छोड़ दे, गोली बाद में दूंगा, पहले मेरा चिल्ला खींचना तो 40 दिन का। मुसलमान को क्या गोली देनी, उस औरत को क्या गोली देनी, बताया इसकी गोली है अल्लज़ीना तत्मन्ना कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, हम अल्लाह को मानते ही नहीं भाई, अल्लाह को नहीं मानते। तो एक दफा नाम ले, तीन दफा अपने रब को पुकारे, ऐसी नींद आए कि खराटे निकलने लगते हैं आदमी की, बोले सुभान अल्लाह। और कमाल है, मेरा तो एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ अपना तरीका। मैं क्या करता हूँ, मैं घड़ी के या अभी साइंस बताती है 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, हम तो मारे गए फिर सोते रहे। मैं कहा ये तो भाई फार्मूला मार्स बड़ा मुश्किल है, 7 घंटे सो तो तब नींद पूरी होती है। मैंने एक और इसमें एक नुकता निकाल लिया, मैं कहा लसी बात करके ना आदमी क्यों ना सोए भाई, सीधी बात है। तो जब भी मैं सोने का टाइम मिलता है मैं घड़ी नहीं देखता, मैं अपना अलार्म लगा देता आराम से। वो कितने आधे घंटे का टाइम मिला, आधे घंटे का अलार्म लगा दिया, एहतियात तो करनी पड़ती है, आधे घंटे का अलार्म लगा दिया। और दुआ क्या मांगता हूँ दोस्तों, अपनी सीक्रेट बात बता रहा हूँ मेरे अल्लाह के दरमियान, क्योंकि डिप्रेशन की बात आ रही है ना, तो मैं भी बहुत बड़ा डिप्रेशन का मरीज हूँ, क्योंकि गुनाह जो बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, फंसा हूँ हर लिहाज से, ना मेरे पास रहमत है ना अल्लाह का फजल है, ये सब अपनी कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो वैसे डिप्रेशन का मरीज हूँ मतलब ज़बरदस्त। तो वैसे फिर मैंने एक वायदा किया अल्लाह ताला से, मैं ये नहीं देखता 7 हैं 8 घंटे बाकी हैं 3 घंटे बाकी हैं। रमजान में प्रैक्टिस बड़ी अच्छी रही इसकी, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस रहती थी, 20 मिनट तो मिलते थे मुझके तरावी को, लेकिन ज़्यादा बिस्तर पर जरूर था। क्या कहता हूँ, अल्लाह ताला लो जी मैं आ गया आपका, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन करम फरमाया अपने फजल से मुझे ऐसी नींद दें गहरी कि इस आधे घंटे के अंदर पूरी 8 घंटे की नींद हो जाए। वल्लाह ही सही बताता हूँ, ऐसे उठता हूँ ना खराटे मारता हूँ आधे घंटे में, पुत नहीं कितना सोया था। वादा कर लो अपना अल्लाह से, क्यों ही बात आपको छोड़ते हो, नहीं हमने तो वही देखना है जो एक जाहिल आदमी देखता है। हम अल्लाह के ईमान वाले हैं, अल्लाह से हमारा ताल्लुक है भाई। नींद उसके अख्तियार में आराम देना, अब अगर ये है कि हम 8 घंटे मैं ऐसे दिखा जो 10-10 घंटे सोते हैं उनकी नींद ही पूरी नहीं होती, कैसे मजा नहीं आया जी, जिसम टूट रहा है अभी नींद पूरी नहीं हुई है, ऐसे ही लोग मुझे बताएं। तो इसका मतलब ये फार्मूला गलत है ईमान वालों के साथ, बल्कि अपने अल्लाह की तरफ रुजू करे कि अल्लाह ताला मैं आया तेरे पास, बहुत मैंने काम करने तो मेरे पास है सिर्फ 1/2 घंटा, अगर मैं 7 घंटे चले गया तो फिर इबादत कहाँ गई मेरी, तूने तो पकड़ना है, तो मैं 1/2 घंटा दे सकता हूँ अपने आप को, लेकिन तू रब है तू सब कुछ कर सकता है, ज़ालिक अल्लाह है बेअज़ीज, तेरे लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मुझे ऐसा सुला दे कि मेरे 8 घंटे पूरे हो जाए, फ्रेश होकर तेरा इबादत करूँ, जिक्र मैं करते सोता हूँ, काम तू मेरा बना दे, आँख बंद करके दिल की तरफ अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, पता ही चले कब सोए, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे फर्स्ट क्लास उठोगे, बिल्कुल तरो ताज़ा करके देख लें। तो ये डिप्रेशन में मोमेंट वजह क्यों है, इसकी वजह बस वही है जो अल्लाह ने बताया, ये तुमने खुद अपने हाथों से किया, फिर मौका से बताया दी तुम खुद कमाई है तुम्हारी, कितने सख्त तरीन चीज़ें गुनाह, और हम कितने लज्जत से कर जाते हैं दोस्तों, सोने वाली बात है। आज के बाद तो भाई पक्के वायदा कर लेना चाहिए अपने आप से कि यार जो कुछ हो जाए जितना भी कुछ हो जाए गुनाह नहीं कर, बर्बादी है बिल्कुल, वो हराम खा रहे हो तो वो तो इतना गंदी चीज़ें खा रहे आदमी जिसके बाद ये नतज निकलते हैं, बच्चों को हराम खा रहे हैं उसको नतज जो निकलेंगे उसको पता ही नहीं, चंद दिनों के अंदर नतज निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्नात भूत परेशानी है, ये वो लटरम पटरम वो हराम जदगी है, नाफरमानी है, पैसा मोहब्बतें दिल में पतें रंजिशें, और फिर आपस में खत लड़ें जैसे बड़े होते जाएंगे, ना इंतफाफियाँ लड़ाई हैं झगड़े नाफरमानी पता नहीं क्या कशू हो जाता है। तो दुहाई कबूल नहीं होती, रहमत नहीं मिलती, मायूसी आ जाती है। और आगे सुने, अल्लाह ने एक मोमिन के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत अच्छा एक इंतजाम किया अल्लाह पाक ने, जिसका हमें इल्म नहीं है इस चीज का। ईमान वालों से अल्लाह ने कितना बेहतरीन इंतजाम क्या किया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है आसमान पे कि ये मेरे बंदे हैं भाई, ये गुनाह नहीं करते हैं, इबादत से नहीं देखता, किसे देखता है, नाफरमानी से मनाते अल्लाह ताला, जो नाफरमानी नहीं करता अल्लाह उसको वली बनाता है। याद करना, हमेशा वो इंसान बनेगा अल्लाह का वली और दोस्त जो नाफरमानी नहीं करता और गुनाह नहीं करता, इबादत से नहीं होता है, इबादत से नहीं होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बंदा है भी, ये मेरा नाफरमान बंदा नहीं, गुनाह नहीं करता, तुम्हारी ड्यूटी है। फरमाया क्या ड्यूटी है, कि तुम्हारी ड्यूटी है जब तक ये दुनिया में है तुम इसके हाजात के लिए हमेशा दुआएं मांगते रहो मुझसे। तो मुझे दुआ मांगने की जरूरत नहीं, एक्चुअली आपको मांगने की जरूरत नहीं, हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका अल्लाह ताला से कि तमाम हाजात को मैं जानता हूँ, लिस्ट में फरिश्तों को दे देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोले कि इसको ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये काम अटके होंगे, ये फना होंगे, बाकायदा लिस्ट जाती है, रिटर्न जाते हैं, रिपोर्टें जाती हैं, फरिश्तों की ड्यूटी लगे, ये लिस्ट है फला बंदे की, फला बॉर्डर में रहता है, 29 नंबर मकान है उसका, ये गली ये नंबर है, ठीक है जी पहचान लिया हमने, फरिश्ते पहचान लेते हैं, तुम मुकर्रर हो, कोई जमात मुकर्रर होगी फरिश्तों, बोले सुभान अल्लाह। मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है, काम क्या है जी, अब हमें तो नहीं पता क्या, अभी हमारी तकदीर में, इसकी तकदीर में ये एक्सीडेंट आने वाला है, ये मुसीबत आने वाली है, इसका बच्चा बीमार होने वाला है, इसके साथ ये काम होने वाला है, इसका कारोबारी मुसीबत आने वाली है, सब लिस्ट आई हुई है। और तुम्हारा काम यह है कि उस तमाम चीज़ों आने से पहले जब वो चीज़ आने वाली है तुमने दुआएं मांगना शुरू कर देनी है, बोले सुभान अल्लाह। और तुम फरिश्तों जब तुम उससे सिफारिशें करोगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश कबूल करके वो मुसीबत और परेशानी से दूर कर दूँ। ये सब कब खत्म हो जाता है, एक थोड़े से गुनाह के तहत, हल्की से लज्जत के तहत, बदमाशी से तहत, अल्लाह दरवाजा बंद हो जाता है। तो मेरे भाइयों, भाई और बड़े नुकसान इसके, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये भी जो है अल्लाह ने हमें बता दिया सारी चीज़, ये सारा मामला जो है और मकसद बताया दी कुम तुम्हारे अपने गुनाह और मासाबकुम मुसीबत। जब भी देखें यहाँ पे कोई मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, जो कुछ आ रही है, क्या करना है, सबसे पहले अपना स्क्रीन करना है, स्कैन, सच्चे दिल से स्कैन कर लो कि बच्चा है तो क्या, तो इससे भी ज़्यादा बदमाशी तूने की है, इसका तू डिजर्व करता है। और इसका हल एक है, बहुत आसान हल है, फौरन अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह ताला इस गुनाह की भी माफ़ी मांगता हूँ, आने वाले गुनाह से भी तौबा करता हूँ और इस गुनाह को अभी छोड़ता हूँ, उस मुसीबत से हम निकल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगो। और आज के बाद गुनाह को ऐसा समझो कि जैसे इंसान जहन्नुम की आग में चला गया, और किसी गुनाह को छोटा ना समझो, हर गुनाह के साथ ये चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, जो मैंने हदीसें आपको सुनाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह पाक हमें गुनाह वाली ज़िंदगी से दूर रखे, हस्ब तौकीफ जितनी इबादत हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, लेकिन गुनाह के नज़दीक बंदा ना जाए। अगर गुनाह हमारे नफ्स और शैतान से हमारा हो गया, उसी वक्त अलर्ट हो जाओ कि मुझसे ये चीज़ हो चुकी है, और फिर उस गुनाह को जो जुल्मत और जिस तमाम चीज़ें पैदा हो गई हैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करके तौबा करके उस गुनाह को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करो, जब तक मुतमिन ना हो जाए दिल हमारा कि नूर वापस आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से गड़गड़ाने से मांगने से माफ़ी से पीछे मत हटो। और पूरा एतक़ाद रखो इन हदीसों पर कि और कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मेरे साथ ये काम हो रहा है, ये सब काम मेरी वजह से हो रहा है कि हरामकारी है, परेशानी है, मेरे अंदर झूठते हैं, हालात तो हमारे ये हैं, जी हमने क्या गुनाह किया जना, हमें तो पता ही नहीं, टेलीफोन उठाती हैं ख़ास तौर पर औरतें, अगर ये निकाल दें बीच में से, नहीं बताएं चुगली हैं दूसरी औरतों की बातें करने, मैं कहता हूँ किसी औरत के पास कोई बात ही ना हो काम बात करने की, किसी औरत के पास कोई बात ही ना हो जो दो दो तीन तीन घंटे बातें हो जाती हैं टेलीफोन पर, यहां तक है लोगों ने रात को मस्जिदें बनाई हुई हैं, बुड्ढों ने कमरे नजदीक हैं अड्डे बनाए हुए, क्या जी शाम होते ही कहते हैं बस सब वहीं जमा हो जाते हैं, फिर गपशप मारते हैं रात के 2 बजे तक बैठ के, जिसम हिल जाता है, इतनी बीमारियां मौजूद हैं, बुड्ढे हैं, मरने वाले हैं, बीमारी साथ हैं, लेकिन शाम होती वो एक जगह जमा हो जाते हैं, उनका मामूल जमा होने के बाद फिर जो बकवासबाजी वहां शुरू होती है, 2 बजे तक क्या होगा मुझे बताया जी। हमारे मस्जिद से घरों के अंदर ईशा के बाद बैठ जाएंगे औरतें, बैठ जाएंगी औरत बैठ जाएंगे, बस बातें शुरू कर देंगी सिवाय चुगली के। और लोग मुझे बताएं, अगर मैं और आप बैठे मेरी आपकी क्या बात होगी, कोई बात हो सकती, कोई टॉपिक ही नहीं है। 5 आदमी बैठ जाए क्या टॉपिक होगा, 3 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, बाकी जितने बातें होंगी, उसने ये किया, उसने फलां किया, उसके रिश्तेदार ये हैं, उसके फलां ये हैं, उसकी माँ ये है, उसकी बहन ये है। 2 औरतों की बात सुन ले टेलीफोन पे आप, बेचिए रिश्तेदार हैं, अपनी इतनी बातें होंगी, आज कैसे हैं आप, ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, इसके बाद कोई बात नहीं होती है कोई हाल। उसके बाद क्या होगी, नहीं जी वो तेरी भाभी वो थी, तो तेरी माँ वो थी, तो उसके अपन ये किया, मेरा खामिद है तो ये हुआ, उसने इसकी चुगली लगाई, पूरा 3 घंटे सारे बिल जो आते इसी पे आते। और खास तौर पे रात के वक्त काम चलते हैं आदमी के। और फिर क्या होता है, अल्लाह अल्लाह की जुल्म गजब उतरना शुरू होता है उन घरों के ऊपर। हम कहते हैं कैसे हो गई बातें, ये क्यों हो रही हैं, हमें तो हमारे घर में तो कुछ गुना ही नहीं है जनाब, हमारा हम तो गुना करते ही नहीं हम तो। और वो अपने वालों को देखें थोड़ा शुरू कर देते हैं, हम तो फला नमाजें पढ़ी, हम तो फला कुरान पढ़े, हम तो फला इज्जती किए, हम फला किए। हमेशा इंसान अपने अमालों को ना देखे बल्कि किसको देखे, अपनी गलतियों को देखे, ताकि इस्तिगफार से अपने आप को इंसान साफ कर सके। हराम के दरवाजों को बंद करो, सबसे बड़ी चीज है, हरामों को बंद करो, छूट को बंद करो, फ्रॉड को बंद करो, तब मोहब्बत निकलेगी सीने से, माल की मोहब्बत निकलेगी, तब जाके इंसान का काम बनता है। वरना इसी तरह इंसान चला जाएगा, कोई ये ना बैठे कि जिक्र का फायदा हो रहा है, कुछ ही नहीं फायदा आएगा जब तक फायदा ये ना हो जाए इंसान में, इतनी तब्दीली अंदर में आ जाए। अल्लाह पाक हम सब में तब्दीली पैदा फरमाए और गुनाहों से नफरत पैदा फरमा दे। वाखर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।